राम ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् चौदह मनु होते हैं ब्रह्मा जी के एक दिन में, और एक मनु को 71 चतुर्युगी मिलती है। तो तीन मनुओं की तो कथा सुना दी, अब चौथा मनु है तामस, उसकी कथा सुनाते हैं। मार्कंडेय जी कहते हैं कि हे क्रौष्टुक मुने, इस पृथ्वी पर स्वराष्ट्र नामक एक विख्यात राजा हो गए जो बड़े पराक्रमी थे। उन्होंने अनेक यज्ञों का अनुष्ठान किया और वे संग्राम में कभी पीठ नहीं दिखाते थे। राजा के मंत्री की आराधना से प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उनको बहुत लंबी आयु दे दी। पर याद रखो, इस संसार में ज्यादा आयु लेना भी एक कष्ट को निमंत्रण देना है। राजा को खूब लंबी आयु मिल गई। राजा एक बार तो बहुत खुश हो गया। उस राजा के 100 स्त्रियां थी, किंतु सबको आयु तो सूर्य भगवान ने दी नहीं, राजा को ही दी। तो सब रानियां एक एक करके मर गईं। राजा के मंत्री और सेवक भी वो भी मर गए। अब वो राजा इतना दुखी हो गया, बड़ा पश्चाताप करने लगा। अरे, मैंने तो सोचा कि लंबी आयु है, खूब दिन तक जिएंगे, परंतु मैं ये भूल गया कि इतना लंबा जीना जिसमें प्रेमी लोगों का मरना हो जाए तो क्या लाभ। बड़ा चित्त दुखी हो गया। वह अंदर से एकदम मन से खिन्न होने लगा, टूट गया, किसी काम में मन नहीं लगता था। उसको अत्यंत दुखी देख करके विमर्द नाम के एक राजा ने उस पर आक्रमण कर दिया और उसका राज्य छीन लिया। अंदर से तो वो विरक्त हो चुका था, अब राज्य उसके हाथ से छिन जाने के कारण से बाहर से भी विरक्त हो गया। कुटुंब में कोई था नहीं, चला गया वन में। और जाते जाते झेलम नदी के तट पर रहने लगा। गर्मी में 5 अग्नि का तप करते थे। 5 अग्नि माने एक आगे, एक पीछे, एक दाएं, एक बाएं, 4 एक सूर्य, 5 अग्नि। बरसात में मैदान में रहकर वर्षा के जल को शरीर पर सहते और जाड़े की ऋतु में पानी के भीतर शयन करते, निराहार रहते, उत्तम व्रतों का पालन करते। एक बार की बात है कि बरसात के समय वे तपस्या कर रहे थे तो लगातार कई दिनों तक खूब वृष्टि हुई, बाढ़ आ गई, राजा भी जल की एक बहुत बड़ी धारा में बह गए। चारों ओर अंधकार छा गया। उनको भी आनंद आता है। जल में बहते बहते उनको एक हिरणी मिल गई। उन्होंने उस हिरणी की पूंछ पकड़ ली और जल के प्रवाह के साथ बहते रहे, लेकिन हिरणी की पूंछ को बड़ा कठोरता से पकड़ लिया और हिरणी उनको बाहर ले आई। लेकिन बाहर कीचड़ बहुत था, कोई बात नहीं, प्रवाह से तो कीचड़ ठीक था, कीचड़ भी बहुत ज्यादा गहरा था। तो हिरणी अपनी ताकत लगा लगाकर कीचड़ से भी पार कर गई। कीचड़ के पार एक बहुत सघन वन पहुंचा। वहां राजा ने देखा कि ये हिरणी कोई पशु है, तो अब वे उसका पीठ का स्पर्श करने लगे कि बिचारी ने मेरी बहुत रक्षा की है, थक गई होगी। उसके पीठ को सहलाया तो वो हिरणी मनुष्यवाणी में बोली, महाराज इस प्रवाह में आप इतने कांप गए, मृत्यु से आप इतने डर गए और आपने मेरी पूंछ छोड़ी नहीं। मैं तो इसे बहुत अच्छा मानती हूं कि आपके प्राण बच गए, परंतु इतनी लंबी आयु प्राप्त करने पर भी आप मृत्यु से इतने भयभीत क्यों, कैसे कांप रहे हैं आप? राजा ने पूछा, रे मैंने तो तुझे एक पशु समझ रखा है, तू तो मनुष्य की तरह बोलती है, और तुझे ये कैसे मालूम है कि मैं कोई राजा हूं? न मेरे सिर पर मुकुट है, न मेरे पास सेना है, न सिंहासन है, तुझे कैसे पता चला? और तू मनुष्य जैसी वाणी बोलती है, क्या रहस्य है? हिरणी बोली, महाराज आपकी 100 पत्नियों में से एक मैं आपकी सबसे प्यारी पत्नी थी और मेरा नाम उत्पलावती था। मैं दृढ़ धनवा राजा की पुत्री हूं और आपकी 100 रानियों में पटरानी भी रही हूं। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरी पत्नी उत्पलावती, वो तो बहुत बड़ी धर्मपरायण थी, पतिव्रता थी, तो तुम ही वो मृग शरीर में आए? तुम्हारी जैसी स्त्री का तो कल्याण क्या, अनेकों स्त्रियों का कल्याण करने का तुम्हारे में सामर्थ्य था, फिर ऐसा कौन सा तुमसे काम हो गया जिससे तुमको मृग योनि में आना पड़ा? क्या बात है? हिरणी हंस करके बोली, महाराज पिछले जन्म में जब मैं बाल्यकाल में पिता के घर पर थी तो सखियों के साथ घूमते घूमते एक दिन मैं वन में गई। वहां मैंने एक हिरण को देखा, एक हिरणी को देखा। वनों में तो रहते ही है, तो उस समय में जो मृगी थी, हिरणी थी, वो मेरे पास खड़ी थी। मैंने उसको मारा, तो वो डर करके छलांग मार करके बहुत दूर चली गई। तब वहां जो हिरण था उसने कुपित होकर के कहा, मूर्खे तू एक राजा की बेटी होने का इतना घमंड करती है, बेचारे निरपराध प्राणियों को लात से मारती है, तेरी दुष्टता को धिक्कार है। हिरण ने जब मनुष्य की वाणी में ये बात कही तो मैं डर गई। मैंने कहा आप कौन हो? उसने कहा कि मैं एक निर्वृति चक्षु नामक मुनि का पुत्र हूं और मेरा नाम सुतपा है। मैं अपनी तपस्या में कुछ कमी होने के कारण मृग शरीर में यहां घूमता हूं, परंतु साधना के प्रभाव से मैं मनुष्य की वाणी बोल सकता हूं। ये बिचारी निरपराध हिरणी घूम रही थी, तुमने इसे इस प्रकार मार करके यहां से दूर कर दिया। ये जंगल तो पशुओं का है ना, तुम्हारा वन में क्या अधिकार, तुम महल में रहती? मैंने कहा कि आप तो मुनि हैं, क्षमाशील हैं, अनजान में मेरे से अपराध हो गया, कोई आप शाप मत दे देना। तो इस प्रकार कहने पर उसने कहा कि तुम मृगी होकर इस वन में रहो तो तुम्हें कैसा लगे? नका बड़ी मुश्किल से ये मानव शरीर मिलता है, आपको भी मानव शरीर मिला था, आपकी कोई साधना में कमी रह गई, इस कारण से आप हिरण बन गए। मैं यदि हिरणी बन जाऊंगी तो मेरे पास तो इतना ज्ञान है भी नहीं, साधना भी नहीं, भगवान ने मुझे मौका दिया है इसलिए मैं हिरणी बनकर के इस साधन भजन करने के मौके को हाथ से जाने नहीं देना चाहती हूं। इसलिए मैं मृगी होना नहीं चाहती। मैंने मुनि को प्रणाम किया और कहा कि देखो मैं अभी बच्ची हूं, मुझे बोलने का ढंग आता नहीं है, और जब पिता के न रहने पर पिता की पुत्री स्वयं अपना पति चुन सकती है ऐसा नियम है, मेरे पिता तो अभी जीवित है, या तो जीवित अवस्था में मेरा किसी के साथ विवाह कर सकते हैं, अन्यथा उनके मरने के बाद फिर मुझ में स्वतंत्रता होगी। लेकिन यह एक सामान्य बात है, श्रेष्ठ पुत्रियां ऐसा करती नहीं है। मैंने अनजान में एक मृगी को लात से मार दिया, वो भग गई। मैं आपके चरणों में बारंबार प्रणाम करती हूं, मुझे आप क्षमा कीजिए। उस मुनि श्रेष्ठ ने कहा देखो मैंने तुमको आज्ञा दी कि तुम मृगी होकर यहां रहो तो मेरी बात तो झूठ हो नहीं सकती। अच्छा इतना मैं कहता हूं कि तू इस शरीर के मरने के बाद मृगी हो जाएगी, और मृगी होने पर तेरे एक ऐसा पुत्र होगा बड़ा श्रेष्ठ होगा। जब तक तेरे पुत्र नहीं होगा तब तक तुझे इन घटनाओं का ज्ञान नहीं होगा, और ज्यों ही तेरे पुत्र हो जाएगा त्यों ही तो मनुष्य भाषा में भी बोलेगी और इन सब घटनाओं की जानकारी तेरे पास हो जाएगी और उसके बाद तू मृग शरीर से मृगी से मुक्त भी हो जाएगी और पतियों के उच्च लोक में जाएगी जहां कोई कुकर्मी जा ही नहीं सकते। तुम्हारे पुत्र से लोल नाम के ऋषि होंगे और वे अपने ऋषि ने लोल नाम का एक पुत्र होगा, बड़ा पराक्रमी होगा और अपने पिता के शत्रुओं को मार करके पृथ्वी पर अधिकार कर लेगा और वही आगे जाकर मनु बनेंगे। इस प्रकार श्राप मिलने के बाद मैं मृगी शरीर में आ गई और उसके बाद मेरे एक पुत्र हुआ तो अब मुझे सब बातों का ज्ञान हो गया। आप इस जल के अंदर डूबते जा रहे थे, मुझे दया आ गई। आप मेरे पति तो रहे ही है, मेरे लिए तो ये धर्म था कि अपने पति की विपत्ति में जरूर रक्षा करनी चाहिए। यद्यपि मेरा शरीर अभी समय मृगी शरीर में है परंतु आप इस समय संकट में थे, इसलिए मैं आपकी रक्षा के लिए आई। राजा को ये सब बात सुनकर बड़ी प्रसन्नता हुई और वो मृगी वहां से ये सब बातें करके उत्तम लोक को चली गई। तदनंतर ऋषियों ने आकर उस मृगी के पुत्र का नाम रखा कि भाई देखो, ये तामसी योनि में पड़ी हुई एक हिरणी के गर्भ से जन्म लिया है, तो इस बालक का नाम बहुत सोच समझ के करना चाहिए। तो कहा कि क्या नाम रखे, तो कहा इसका नाम तामस रख दो क्योंकि तामसी योनि से पैदा हुआ है। पिता अपने पुत्र तामस का पालन करने लगे, वही पिता। जब तामस वो मृगी ने क्या किया, वो पुत्र उनको दे दिया और वही जो राजा था वो अपने पास पालन करने लगा। जब तामस को कुछ समझ में आया तो उसने पिता से पूछा, पिताजी आप कौन है, मैं आपका पुत्र कैसे हूं, मेरी माता कौन है और आप किस लिए यहां जंगलों में रहते हैं, सच सच बताइए। तब पिता ने कहा कि बेटा मैं राजा हूं और तुम्हारी मां थी वो पहले मेरी पत्नी थी, उसके बाद हिरणी बन गई और तत्पश्चात उसने तुमको जन्म दिया, जन्म देते ही वो अपने लोक में चली गई। तामस ने फिर भगवान सूर्य की आराधना की और कहा कि हे सूर्यदेव, लंबी आयु न देना, जो भाग्य में लिखा है उस आयु को बढ़ाना भी नहीं घटाना भी नहीं। आप मुझे दिव्य अस्त्र जरूर प्रदान कीजिए कि जिन अस्त्रों का ज्ञान होने के बाद इस संसार के अंदर दुष्ट शत्रुओं को परास्त किया जाए और मेरे पिता का राज्य पिता को मिल जाए। पिता ने कहा, बेटा मैं तो अब राज्य नहीं चाहता हूं क्योंकि मैंने ये विचार कर लिया है कि संसार के इन पदार्थों में कोई महत्व की बात नहीं है। पिता भी विरक्त से रहकर रहने लगे और वे अपने लोक में चले गए। इधर तामस ने सूर्य के द्वारा जितने जितने शस्त्र प्राप्त किए थे उन सब शस्त्रों को लेकर उसने शत्रुओं पर आक्रमण किया और वो मनु के पद पर प्रतिष्ठित हो गया, तब से अब तामस मनवंतर कहलाता है। इस तामस मनवंतर में कई चार देवता और शिखी नाम का इंद्र सौ यज्ञों को अनुष्ठान प्राप्त करके इस पद को प्राप्त होने वाला था और सात ऋषि, ये एक मनु का ग्रुप होता है, देवता ऋषि और इंद्र और स्वयं, इनका एक ग्रुप था। ये सब राजा के साथ में रक्षा करते थे। मार्कंडेय जी कहते हैं कि पांचवें मनु का नाम था रैवत। तो कहते हैं ये रैवत नाम का जो मनु था उसका कैसे जन्म हुआ वो सुनाता हूं। पूर्व काल में ऋतवाक नाम के एक प्रसिद्ध महर्षि थे। ऋतवाक, ऋत माने सच्ची और वाक माने वाणी, जिनकी वाणी सदा सच्ची हो। उनके बहुत समय तक कोई पुत्र नहीं हुआ। दीर्घ काल के पश्चात एक पुत्र हुआ तो वो रेवती नक्षत्र में और अंतिम चरण में उसका जन्म हुआ। ऋषि बड़े खुश हो गए, उन्होंने बालक के सब संस्कार वगैरह विधि पूर्वक करवाए, फिर उपनयन संस्कार हो गया, फिर उसको वेदाध्ययन के लिए प्रेरित किया, पर वो सुशील नहीं था। जब से उसका जन्म हुआ था तब से वह महर्षि बहुत बड़े भारी रोग से पीड़ित रहने लगे और उस बालक की जो मां थी वो कोढ़ से पीड़ित हो गई, बहुत दुख उठाने लगी। बालक के पिता ने दुखी होकर विचार किया कि क्या अनर्थ हो गया। इधर वो दुष्ट बुद्धि वाला उनका पुत्र तरह तरह के उपालंब के काम करने लग गया। उन्होंने किसी ऋषि कुमार की स्त्री का अपहरण कर लिया। तब ऋतवाक ने मन में खिन्न होकर के विचार किया, इस संसार में मनुष्य का पुत्र के रहना अच्छा है, मनुष्यों का बिना पुत्र के रहना अच्छा है, किंतु कुपुत्र का होना कदापि उत्तम नहीं है। बेटा नहीं है तो कोई बात नहीं, पर बेटा यदि खराब निकल गया तो बेटा नहीं है इस बात के दुख को वो खत्म कर देता है। बेटा नहीं है, पुत्र नहीं हो तो एक ही दुख है, पुत्र नहीं है, लेकिन कुपुत्र होता है उसको जगह 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 कष्ट होता है माता पिता का। कुपुत्र तो माता पिता के हृदय को सदा ही सालता रहता है और स्वर्ग में गए हुए पितरों को भी नरक में गिरा देता है। कुपुत्र तो केवल माता पिता को दुख देने के लिए होता है। उस पापात्मा पुत्र को महान धिक्कार है, जिनके पुत्र सब लोगों के प्रिय हों, परोपकारी हों, शांत हों, उत्तम कर्मों में लगे रहने वाले हों, वे ही धन्य हैं। क्या करूं, मेरा जन्म इस कुपुत्र के कारण से बहुत खराब हो जाएगा, परलोक भी मेरा खराब हो जाएगा, अब क्या करूं, कुपुत्र का आश्रय लेने से मेरा अगला जन्म नरक में ही होने वाला लगता है, उत्तम गति को प्राप्त करने वाला मैं बन नहीं सकता। बहुत दुखी हो गए, हृदय में बड़ी जलन होने लगी। अकस्मात उनके आश्रम में गर्ग मुनि आया। ऋतवाग मुनि ने गर्ग मुनि का बड़ा सत्कार किया और उनके सामने उन्होंने अपना दुख प्रकट किया कि हे महामुनि, पूर्व काल में उत्तम व्रत का पालन करते हुए मैंने सब वेदों का विधि पूर्वक अध्ययन किया और उनके समाप्त करके वैदिक विधि के अनुसार फिर मैंने गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया और फिर वहां शास्त्र के नियम के अनुसार मैं रहा और अपनी पत्नी के साथ रहकर मैंने वेदों का स्मृतियों का जितना कर्तव्य कर्म था सबका अनुष्ठान किया। आज तक मैंने किसी अनुष्ठान में कोई कमी नहीं रखी और फिर उसके बाद मैंने पुम नाम का नरक न मिले इसलिए मैंने गर्भाधान की विधि से पुत्र उत्पन्न किया और मेरे मन में कोई किसी प्रकार की वासना नहीं थी। ये सब होने पर भी ऐसे कुपुत्र का जन्म क्यों हो गया ऋषिवर? क्या ये मेरे दोष से हुआ है या इसका कोई दोष है उससे हुआ है? इसकी दुष्टता से हम लोग बहुत दुखी हैं और बंधुजनों के लिए भी ये बहुत शोक कारक है। हे गर्गाचार्य जी, आप कोई उपाय बताओ। गर्गाचार्य जी ने कहा कि ऋतवाग जी, आपका पुत्र रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उत्पन्न हुआ है, अतः दूषित समय में जन्म लेने के कारण से यह दूषित आचरण करता है, दूषित भाव रखता है और इसके दुख से आप दुखी होते हैं। यही आपके लिए दुखदायी हो गया। ऋतवाग बड़े सत्यवाग थे, उनकी वाणी सत्य निकलती थी। उनको थोड़ा क्रोध आ गया, मेरे एक ही तो पुत्र था, वो भी रेवती नक्षत्र के अंतिम चरण में उत्पन्न हुआ, उसके कारण से यदि दुष्टता आई है तो हे रेवती नक्षत्र, तू आकाश में कहां जाकर छिप गया, तेरा शीघ्र पतन हो जाए। तो रेवती नक्षत्र का पतन हो गया, वो आकाश से गिरने लगा, सारा संसार चकमक करने लगा, सब चमकने लगे। चमकने लगे के दो अर्थ होते हैं, चमके एक चमकना माने दिखाई देना, प्रकाशमान होना। और फिर वो रेवती नक्षत्र जाकर कुमुद नाम के पर्वत पर गिरा तो वो पर्वत भी रैवत पर्वत कहलाता है, रैवतक पर्वत। उस नक्षत्र की जो कांति थी वह कमल मंडित सरोवर के रूप में प्रकट हो गई। उस सरोवर से एक बहुत सुंदर कन्या का प्रादुर्भाव हुआ। ये रेवती की कांति से प्रकट हुई थी इसलिए प्रमुच नाम का मुनि वहां पर बैठा हुआ था, उसने उसका नाम रेवती रख दिया, कन्या का नाम रेवती रख दिया। वह उनके आश्रम के पास प्रकट हुई थी इसलिए वे प्रमुच ही उसके एकमात्र पिता के रूप में माने गए, उन्होंने उसका पालन पोषण किया। जब वो कन्या बड़ी हो गई युवती बन गई तब प्रमुच मुनि उनके लिए योग्य वर के लिए अग्निशाला में बैठ करके अग्निदेव से प्रार्थना करने लगे, हे अग्निदेव, मेरी इस मुंह बोली पुत्री के लिए कोई बहुत बड़ा अच्छा सुंदर वर बताइए ताकि मैं इसका विवाह कर दूं। ऋषि की प्रार्थना को सुनकर अग्निदेव ने साक्षात प्रकट होकर कहा कि इस कन्या का स्वामी राजा दुर्गम होंगे, जो महापराक्रमी महाबलशाली प्रिय वक्ता और धर्मवत्सल होंगे। संयोग की बात थी कि जिस समय वरदान दे रहे थे अग्नि देवता, बस थोड़ी देर में शिकार खेलते खेलते वही राजा दुर्गम मुनि के आश्रम में पहुंचे। वे प्रियव्रत के वंश में उत्पन्न बलवान और पराक्रमी थे राजा दुर्गम। इनका पिता का नाम विक्रमशील और माता का नाम था कालिंदी। आश्रम में पहुंचकर जब उन्हें ऋषि नहीं दिखाई दिए, तब उस दुर्गम राजा ने रेवती को देखा। देखते ही उनके मुंह से शब्द निकल पड़ा, प्रिय बताओ मुनि श्रेष्ठ प्रमुच इस आश्रम में कहां है? मैं उन्हें प्रणाम करने के लिए आया हूं, बताओ। मुनि अग्निशाला में बैठे हुए थे, वहीं से राजा का वार्तालाप और प्रिय ये जो संबोधन सुना, तो ऋषि एकदम अपनी अग्निशाला से बाहर आए कि हमारी पुत्री को प्रिय किसने कहा? अभी तो इसका विवाह नहीं हुआ है, विवाह से पहले स्त्री को कन्या को कोई ऐसे संबोधनों से कैसे बोल सकता है? कौन हो कोई विशेष बात है? बाहर आकर उन्होंने उस राजा को देखा, बड़े सुंदर राजोचित लक्षण। जब ऋषि अपनी कुटिया से बाहर आए तो इधर राजा भी ऋषि के पास गए, प्रणाम किया। बड़ा आश्चर्य हुआ ऋषि को। उन्होंने पूछा कि आपका नाम क्या है? महाराज मेरा नाम दुर्गम है। दुर्गम? कि क्यों महाराज? अरे दुर्गम, अपने शिष्य को कहा, गौतम लाओ लाओ, हमारे बहुत बड़े महाराज आए, अर्घ्य लाओ, पूजन सामग्री लाओ। राजा का खूब अच्छा स्वागत किया, आसन पर बैठाया और प्रमुच नाम के महामुनि ने स्वागत पूर्वक पूछा, राजन आपका घर, आपकी सेना, आपका खजाना, आपका मित्र, आपके नौकर चाकर, मंत्री और शरीर सब कुशल पूर्वक है ना? राजा ने कहा, महाराज आप कुशलता चाहते हो तो फिर मैं अकुशलता की बात कही कैसे सकता हूं? मेरे पास कोई अकुशलता की बात नहीं है, सब आनंद है। ऋषि बोले, तो राजन मेरे यहां एक कन्या है, इसको ढूंढने के लिए मैंने अग्निदेव से पूछा था कि इसका पति कौन होगा, तो अग्निदेव ने कहा कि राजा दुर्गम ही इसके स्वामी होंगे, इसलिए आप मेरी इस पत्नी को ग्रहण कीजिए। और आपने इसको प्रिय कैसे बोल दिया? प्रिय कहने का अर्थ क्या है? क्या समझ के प्रिय कहा है? मुनि की बात सुनकर राजा दुर्गम मौन हो गए। तब महर्षि प्रमुच अपनी कन्या का वैवाहिक कार्य संपन्न करने के लिए तैयार हुए। अपने विवाह के लिए पिता को इस प्रकार तैयारी करते देख उस कन्या ने विनय भाव से मस्तक झुकाकर पिता से कहा, पिताजी क्या कर रहे हैं? बेटा अग्निदेव से प्रार्थना की थी और अग्निदेव ने जिसको यहां के जिसको तुम्हें हाथ में देने के लिए कहा था वो स्वयं यहां आ गया, ये अवसर मैं खोना नहीं चाहता हूं, तेरा विवाह करना चाहता हूं। पुत्री ने कहा, महाराज मेरी बात मानोगे? पिताजी बोलो, मेरा विवाह रेवती नक्षत्र में ही करना, तब ऋषि बोले कि बेटा रेवती नक्षत्र तो खत्म हो गया, उसको तो आकाश से ऋषि ने नीचे गिरा दिया। ऋत्वाग नाम के महातपस्वी ने क्रोध करके और उसको तो समाप्त सा कर दिया। फिर कन्या ने कहा, पिताजी यदि ऋत्वाक मुनि ऐसी तपस्या करते हैं तो फिर आपकी तपस्या क्या काम आएगी? कोई किसी तपस्या से किसी को नष्ट करता है तो क्या कोई उस नष्ट हुए को वापिस उसको बना नहीं सकता? आप भी तो एक बहुत बड़े तपस्वी हैं, ऐसे नक्षत्र मंडलों पर क्रोध करने लग जाएंगे और प्रकृति की बनी हुई चीजों को इस प्रकार अपने अहंकार से कोई नष्ट करता चला जाएगा तो फिर सारी नक्षत्र ऐसे खत्म हो जाएंगे। कोई भी जन्म लेगा तो रेवती नक्षत्र या कोई भी नक्षत्र किसी न किसी में जन्म लेगा ही, और नक्षत्र में जन्म लेता है उससे क्या है, मनुष्य तो अपने कर्मों के कारण से अच्छा बुरा देखता है। क्या रेवती नक्षत्र में पैदा होने वाले सारे ही खराब है? क्या और नक्षत्रों में पैदा होने वाले सभी ठीक है? नहीं पिताजी, आप रेवती नक्षत्र को अपनी तपस्या के प्रभाव से वापस स्थापित कीजिए और फिर उसी नक्षत्र के ऊपर जब घड़ियां आए तो उसी नक्षत्र में मेरा विवाह कीजिए। ऋषि बोले कि बेटा तेरे अब तेरा विचार बहुत ऊंचा है, वास्तव में ऊंचे से नीचे गिरा देने में श्रेष्ठता नहीं है। कितनी अच्छी बात, ऊंचे से नीचे गिराने में श्रेष्ठता नहीं है बल्कि नीचे गिरे हुए को ऊपर उठाने में विशेषता है। मैं तेरी इस भावना का आदर करता हूं और रेवती नक्षत्र को पुनः चंद्रमा के मार्ग में स्थापित करता हूं। तदनंतर महामुनि प्रमुच ने अपनी तपस्या के प्रभाव से रेवती नक्षत्र को पुनः पहले के भांति चंद्रमंडल में नियुक्त कर दिया और फिर उसी नक्षत्र में वैदिक मंत्रों का उच्चारण करते हुए कन्या का विधि पूर्वक विवाह कर दिया और प्रसन्न होकर अपने जामाता से कहा कि बताइए अब इस विवाह में मैं अपनी पुत्री के इस विवाह में आपको दहेज रूप में क्या दूं? मांगो, मेरी तपस्या अप्रतिहत है, कोई मेरी तपस्या को रोक नहीं सकता है, आपको दुर्लभ से दुर्लभ वस्तु दे सकता हूं, बोलो क्या चाहते हो? राजा ने कहा, महाराज मेरा जन्म स्वयंभू मनु के वंश में हुआ है, मैं प्रियव्रत के वंश में पैदा हुआ हूं, अतः मैं आपकी कृपा से ऐसा पुत्र चाहता हूं जो मनवंतरों का स्वामी हो। ऋषि बोले, वाह राजा, ये तो तुमने मांग लिया, मेरे कहने से तुमने मांग लिया। यदि तुम मुझे यह कहते कि मैं कुछ नहीं चाहता हूं, आप ही दे दीजिए, तो मैं भी यही बात कहता जो तुमने मेरे से मांगा। तुम्हारा पुत्र मनु होकर संपूर्ण पृथ्वी का उपभोग करेगा और धर्म का बड़ा ज्ञाता होगा। और फिर राजा ने उस रेवती से रईवत को जन्म दिया और वो सब शास्त्रों का ज्ञाता हुआ और वो अपने मनमंत्रों का स्वामी हो गया। अब आगे पांचवें मनमंत्र की कथा चलती है। अपने तो भाई ऐसी ऐसी बातों से जो शिक्षा आती है ना वो देखनी है, इसमें शिक्षा कितनी बड़ी है।